स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मित्रों, हम सब पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि यूहन्ना ने देखा कि एक आग का कांच वाला समुद्र है, उसके ऊपर हाथ में वीणा लिए हुए महाक्लेश के समय के ईश्वर भक्त हैं। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं। उनका गीत समाप्त होते ही यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग का मंदिर खुल गया और वहां से 7 स्वर्गदूत निकले, जिन्हें सोने के 7 कटोरे दिए गए। ये कटोरे अनादि अनंत परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए थे। तो आइए हम आज आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। मेरे मित्रों, लिखा है कि उन 7 स्वर्गदूतों को सोने के 7 कटोरे दिए। यहां मैं आपको फिर एक बार उस 7 अंकों के बारे में बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। मैं सुनता हूं कि 7 सिद्धता का अंक है या सच नहीं है। 7 वास्तव में परिपूर्णता का अंक है और परिपूर्णता कभी कभी सिद्धता भी प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने 6 दिन में स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए नहीं कि कार्य पूरा हो गया था, परंतु इसलिए कि उसका कार्य सिद्ध था। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 की श्रृंखलाएं पूर्णता को प्रकट करती है। मेरे विचार में इन 7 कलीसियाओं में संपूर्ण कलीसियाई इतिहास का उल्लेख निहित है, और यह भी कि 7 की इन श्रृंखलाओं में से प्रत्येक में संपूर्ण महाक्लेश हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक श्रृंखला संपूर्ण महाक्लेश का दृश्य प्रदान करती है। सबसे पहले 7 मुहरें हैं जो एक सामान्य रूपरेखा है। इसके बाद भविष्यवाणी पढ़ते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर महाक्लेश के अंतिम 3.5 वर्षों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहां हमने पढ़ा लिखा है, प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए कि उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, प्रकोप अर्थात क्रोध भरा हुआ है। तब आगे देखते हैं, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। मंदिर का उल्लेख बाइबल का ज्ञान रखने वाले किसी भी मनुष्य के लिए स्पष्ट संकेत है कि इस समय कलीसिया परिदृश्य में नहीं है। न तो मंदिर और न ही मिलाप वाला तंबू किसी भी प्रकार कलीसिया से संबंधित नहीं है। वे प्रभु यीशु के प्रतीक हैं, जिनका आज हमारे लिए आत्मिक अर्थ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें मंदिर या तंबू बनाना चाहिए। आज बहुत से लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे नए नियम का आरंभ होते ही इसराइल के निमित्त परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को खारिज कर देते हैं। परंतु सच तो यह है कि ये पद इसराइल ही से संबंधित हैं, क्योंकि मंदिर और मिलाप वाला तंबू उन्हीं के पास था। मेरे मित्रों, आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि नया नियम किसी भी प्रकार से न तो इसराइल को अस्वीकार करता है, न ही उसका त्याग करता है। लिखा है, सोने के साथ कटोरे। ये कटोरे महाक्लेश के अंतिम भाग का प्रतीक है। ऐसे कटोरे मंदिर में बलि का लहू चढ़ाने के काम में आते थे, अर्थात पाप मुक्ति का लहू। याचकों के समान वस्त्र पहने ये सात स्वर्गदूत मंदिर के मुख्य भाग से निकलते हैं। वे दया दर्शाने की सेवा नहीं करते हैं, वे मसीह का त्याग करने वाले संसार पर प्रकोप के कटोरे उलटने के लिए विचित्र सेवा में लगे हुए हैं। जिस संसार ने प्रभु यीशु मसीह के लहू को तुच्छ जाना, उसे पाप का दंड भोगना है। यह दंड मनुष्य और शैतान के द्वारा बैर के परिणाम स्वरूप लाया गया दंड नहीं है, यह प्रभु यीशु का सीधा कार्य है। हमने विनम्र प्रभु यीशु को देखा है और अब हम मेमने का प्रकोप भी देखते हैं। हम एक छोटे मेमने के क्रोध की कल्पना नहीं कर सकते। शेर गरजता है, परंतु मेमना नहीं गरजता। एक दिन मेमने का क्रोध इस संसार को आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे प्रियो, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता अपराध और पाप के कटोरे के भरने और उसके भरने तक परमेश्वर के धीरज धरने की चर्चा करते हैं। जब वह कटोरा भर जाता है, तब परमेश्वर दंड देने के लिए निकल पड़ता है। ये सात स्वर्गदूत जो सोने का कटोरा लिए हुए हैं, परमेश्वर के दंड का उल्लेख करते हैं, न कि मनुष्य की भूल या शैतान की शत्रुता का। यह दंड परमेश्वर का सीधा कार्य है। जी हाँ, इसलिए हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर हमारे दंड का न्याय करता है, अर्थात लेखा लेता है, और उसी के अनुसार हम पर दंड भी देता है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 15 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 16 में जाएंगे, जिसका विषय है सातों कटोरों के प्रकोप का उंडेला जाना। इस अध्याय का विषय है सात स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रकोप के सात कटोरे उलट रहे हैं, और यहां भी छठवें और सातवें कटोरे के मध्य अन्य अर्थात अतिरिक्त चर्चा की गई है। अध्याय 15 इस अंश का अमुक है, जो वास्तव में इसका ही अभिन्न अंश है। यदि हम एक बार और दोहराएं तो उचित ही होगा कि प्रकोप के कटोरे संसार पर परमेश्वर के सीधे दंड के प्रतीक हैं। वे शैतान की युक्ति या मनुष्य के अनाचार का परिणाम नहीं है। ये कटोरे पशु के राज में उल्टे जाएंगे। वे समय का एक छोटा सा अंतराल है, संपूर्ण समय की तुलना में। मेरे प्रियो, इस अध्याय में व्यक्त दंड और मूसा के समय मिस्र को दिए गए दंड में निश्चित ही समानता है। हम देखते हैं महाक्लेश के अंतिम दंड की तैयारी। इस अध्याय का प्रथम पद उस बड़े शब्द के संदेश की चर्चा करता है जो सात स्वर्गदूतों को दिया गया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मेरे मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु इस समय संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिए हुए है। आपको याद होगा कि अध्याय 5 में उस पुस्तक की 7 मुहरों को खोलने योग्य केवल प्रभु यीशु ही था, और उसके द्वारा जब वह मुहरें खोली गई तब घटनाओं का यह क्रम आरंभ हुआ। इस पुस्तक के अंत तक वही सब कुछ अपने हाथ में लिए हुए है, वही है जो जय के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। अधिकार, महिमा और वैभव उसी का है। यह इस प्रभु यीशु को त्यागने वाले संसार पर उसका दंड है। पिता परमेश्वर ने सब दंड उसी के हाथ में सौंप दिया है। प्रभु यीशु ही उन 7 स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वे दंड के कटोरे लेकर निकलें, जो अंतिम दंड होगा। अब न तो देर होगी और न ही समय का अंतराल होगा। समय आ गया है, आज्ञा दी जा चुकी है, और ये 7 स्वर्गदूत आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य के लिए वरन एक विश्वासी के लिए भी यह समझना कठिन है कि परमेश्वर इस विद्रोही संसार और परमेश्वर से घृणा करने वाले संसार पर अपना प्रकोप उंडेलेगा और इस सभ्यता को नष्ट कर देगा। परंतु मेरे प्रियो, आज आपको जो कुछ भी दिखता है वह परमेश्वर के दंड के अधीन है। प्रदूषण और जनसंख्या विस्फोट से पूर्व का समय मुझे आज भी स्मरण है कि कैसा मनोहर वातावरण होता था। वृक्षों से घिरी हुई सुंदर सड़कें जो हमारे मन को बहलाने के लिए काफी थी। हम रमणीय स्थलों पर जाते थे, समुद्री तट पर जाते थे, पर्वतों और पहाड़ों पर सैर करते थे और रेगिस्तान के निकट भी जाते थे। वहां चारों ओर हम लोगों के विज्ञापन को देखते थे जो शराब और शरीर की अभिलाषाओं को भड़काने वाले विज्ञापन होते थे। यह सब देख मुझे प्रभु यीशु के वचन स्मरण आए, जब अपने शिष्यों के विस्मयकारी शब्द उसने उस भव्य मंदिर के विषय सुने जिसे मत्तीरच सुसमाचार 24 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु की बात सुनकर शिष्य चकित हुए। मैंने भी अपनी पत्नी से कहा, यह सब सौंदर्य और तड़क भड़क जो आज हम देख रहे हैं एक दिन समाप्त हो जाएगी। यह सब परमेश्वर के दंड के अधीन है और एक दिन धुएं में उड़ जाएगी। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास करें, हमें अपना निवेश स्वर्ग में करना है, जहां ना कीड़ा लगता है, ना काई खाती है, और चोर भी चोरी नहीं कर पाता और न ही कोशिश कर सकता है। आप शायद सोच रहे हैं, मेरे निवेश तो सुरक्षित हैं और प्रतिभूतियां भी मेरे बैंक के लॉकर में हैं और मैं सुरक्षित रह सकता हूं, रख सकता हूं। परंतु एक दिन वे आपके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें छोड़कर इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके हाथ खुले के खुले रह जाएंगे और आप दुनिया को छोड़ देंगे। जी हां, हमारा यह संसार परमेश्वर के दंड के अधीन है। इस सत्य को स्वीकार करना विश्वासियों के लिए भी कठिन है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वह दयावान है और दंड नहीं देगा, ऐसा प्रचार बहुत हो चुका है। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अलग ही कहानी सुनाती है जो सत्य है। आइए हम आगे देखेंगे। पहला कटोरा उलटना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। एक पुस्तक के लेखक ने यह लिखते हुए कहा है, प्रत्येक स्वर्गदूत अपना समय आने पर स्वर्गीय दृश्य से हट जाता है। दूसरे शब्दों में, वह स्वर्गदूत स्वर्ग में दया आसन से निकलकर दंड देता है। वह स्वर्ग से निकलकर परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पृथ्वी पर उलट देता है, जिसके कारण पृथ्वी को दंड मिलता है। दंड का यह पहला कटोरा बड़ा रोचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ख्रीस्त विरोधी के अनुयायियों के विरुद्ध रोगाणु युद्ध करता है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जीवन लहू में है, वरन मृत्यु भी लहू में ही है। ये घाव कोढ़ या कैंसर भी और उससे भी अधिक भयानक है। मनुष्य एक रोग का उपचार खोज लेता है तो उससे भी अधिक भयानक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये परमेश्वर के दंड हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर उसके शरीर से दर्शाता है कि वह नैतिकता में कैसा है, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है। प्रकोप के पहले कटोरे के उंडेले जाने पर वैसे ही घाव मनुष्य के शरीर पर वैसे ही घाव उभरे जैसे निर्गमन के पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 से 12 पद में व्यक्त है कि मिस्रियों के शरीर पर फोड़े फूट निकले थे। यहां मूसा की भविष्यवाणी ध्यान देने योग्य है। उसने ऐसा ही दंड इसराइलियों के लिए कहा था। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और इनकी सूची वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसके 27 पद में देता है। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 35 पद में लिखा है कि ये रोग असाध्य होंगे, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सिर तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यह मूसा की भविष्यवाणी है। यहां एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा, जी हां, उनके शरीर से निकलेगा जिन्होंने पशु का चिन्ह अपनाया है। हमने यह भी देखा है कि चिन्ह न लेने वाले भी दुर्दशा में थे। वे ना तो कुछ खरीद सकते थे और न ही कुछ बेच सकते थे। यदि किसी का परिवार भूख से मर रहा हो तो यदि वह दुकान से चोरी करे तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। पशु का चिन्ह नहीं अपनाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, परंतु महाक्लेश के अंत में जिनके पास पशु का चिन्ह था और जिन्होंने जीवन का आनंद लिया परमेश्वर से दंड पाएंगे। मेरे मित्रों, क्या मैं यहां अपना विचार व्यक्त कर सकता हूं? मैं यही सोचता था कि मेरा जो शारीरिक बीमारी है परमेश्वर का दंड है। मैं आज भी ऐसा ही सोचता हूं। परमेश्वर ने मुझे रोग मुक्त किया, यह उसकी क्षमा का प्रमाण है, और फिर उसने मुझे एक महान सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा है। मैं इसमें अति आनंदित हूं, परंतु महाक्लेश के युग में यह फोड़ा जो कैंसर से भी कहीं अधिक भयानक होगा मनुष्य को परमेश्वर की ओर फिरने की प्रेरणा नहीं देता है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं दूसरे कटोरे का उंडेला जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। यह विपत्ति दूसरी तुरही की विपत्ति से कहीं अधिक भयानक है। उसमें तो एक तिहाई समुद्र रक्त रंजित हो गया था, परंतु इसमें संपूर्ण समुद्र रक्त रंजित है और यह लहू मृतकों का है। मेरे प्रियो, लहू जीवन का प्रतीक है। लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर कहता है कि शरीर की जान लहू में होती है। समुद्र में असंख्य प्राणी हैं, वह जीवन से भरा हुआ है और यह खारा पानी पृथ्वी की गंदगी का निवारक है। तथापि इस विपत्ति में लहू मृत्यु का प्रतीक है। समुद्र जीवन के गर्भ की अपेक्षा मृत्यु की कब्र बन जाएगा। समुद्री शीतल वायु मृतक प्राणियों और रक्त रंजित पानी तथा तट पर पड़े मृतक पशुओं के कारण दुर्गंध युक्त हो जाएगी। मेरे प्रियो, व्यापार निष्क्रिय हो जाएगा, मनुष्य मक्खियों के समान मरने लगेगा। मिस्र की पहली विपत्ति थी, नील नदी का जल लहू हो गया था। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसके 20 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, यहां बहुत अधिक समानता है। मैं सोचता हूं हम परमेश्वर पर कितना निर्भर करते हैं। बिजली, गैस, पानी का बिल आता है, परंतु यह बिजली, गैस, पानी कहां से आया है? निसंदेह ये साधन है, परंतु इनका निर्माता तो परमेश्वर ही है। क्या परमेश्वर ने आपको सूर्य के प्रकाश का बिल भेजा है? क्या उसने आपको हवा का बिल भेजा है? यदि परमेश्वर बिल भेजे तो आप उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु का त्याग करने वाले इस संसार पर परमेश्वर का कैसा रूप देखते हैं, परमेश्वर कैसा दयावान है, परंतु वह अंत में इस पृथ्वी को दंड देगा। परमेश्वर को प्रकोप के दिन स्वर्गदूत कटोरों से विपत्तियां उंडेलेंगे। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे तीसरे कटोरे का उंडेला जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 4 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र, जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हां, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। मेरे प्रियो, यह विपत्ति वैसे ही थी जैसी तीसरी तुरही के फूंके जाने पर आई थी, परंतु कहीं अधिक भयानक थी। तब केवल 1/3 ताजा जल प्रभावित हुआ था, परंतु इस बार पृथ्वी का संपूर्ण जल पीने योग्य न रहेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्यों का अवर्णित नाश होगा। लिखा है, पानी के स्वर्गदूत, यह स्वर्गदूत परमेश्वर के इस पृथ्वी पर जल विभाग का अधिकारी है। यह सृष्टि पर प्रभाव डालने वाले स्वर्गदूतों की एक और सेवा दर्शाता है, वे इस जगत के विभिन्न विभागों के कार्य करता है। हमने हवा को नियंत्रित करने वाले 4 स्वर्गदूत देखे हैं। यह स्वर्गदूत जो पूरी कहानी जानता है कहता है कि दंड देने में परमेश्वर पूर्ण रूपेण न्यायनिष्ठ एवं पवित्र है। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो भी करता है वह न्याय में उचित और पवित्र है। यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो यह बड़ी बुरी बात है। गलत आप हैं, परमेश्वर नहीं। कल्पना कीजिए कि एक अकिंचन मनुष्य खड़ा होकर के कहता है, मेरे विचार में परमेश्वर जो कर रहा है वह उचित नहीं है। मैं ऐसे मनुष्य से एक प्रश्न पूछता हूं, आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप कर भी क्या सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से सहमत नहीं हैं, तो उचित होगा कि आप उससे सहमत हो जाएं। परमेश्वर अपने हर एक काम में न्याय संगत है। लिखा है, उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। यह प्रतिकार के साथ बुराई का बदला बुराई है। तलवार से जीने वाले तलवार से नष्ट होंगे। ये दंड पाने वाले लोग वे थे जिन्होंने परमेश्वर के जनों को शहीद किया था। अब परमेश्वर उन्हें लहू पिला रहा है क्योंकि उन्होंने धर्मियों का लहू बहाया था। कहता है, मैंने वेदी से यह शब्द सुना, ये वे पवित्र जन हैं जो वेदी के निकट न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 से 11 पद में क्या लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समानवध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। उनकी इस प्रार्थना का उत्तर अब दिया गया है। परमेश्वर लंबे समय से इस ओर लक्ष्य साधे हुए था और अब समय आ गया है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाए। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सत्य है, हम उसे झूठा नहीं ठहरा सकते हैं, वह न्याय करता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, इस समय जो वचन सुन रहे हैं इस बात को जान ले कि परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है और चाहता है कि आप बचाए जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
अगर हमको अगर हमको